भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम भागवत के चौथे स्कंद से पढ़ रहे हैं, चौथा अध्याय और चौथा श्लोक। तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सति। एकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः। सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः। पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यताः। तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीम्। एकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः। सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः। पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यताः। तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीम्। एकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः। सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः। पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यताः। तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीम्। एकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः। मणिमन्मदादयः। वैष्णवीस्, तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीम्। एकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः। सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादय। पुरो वृषेन्द्रास्तरसा। ताम्, उसको, सती को, अन्वगच्छन्, पीछा करते, द्रुतविक्रमां, तेजी से छोड़ते, सतीम, सती को, एकाम, अकेले, त्रिनेत्र, शिव तीन नेत्रों वाले, शिव के अनुचरा अनुयायी सहस्रशः हजारों सपार्षद यक्षाः उनके पार्षदों तथा यक्षों के सहित मणिमत मद आदयः मणिमान मद आदि पुरह वृष इंद्राः नंदी बैल को आगे करके तरसा तेजी से गतव्यताः निर्भीक अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाने जाते देखा तो शिव जी के हजारों शिष्य जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर सती के पीछे पीछे हो लिए। तात्पर्य सती बड़ी तेजी से जा रही थी कि कहीं उनके पति रोक न लें, किंतु तुरंत ही उनके साथ शिवजी के हजारों शिष्य लग गए जिनमें यक्ष मणिमान तथा मद मुख्य थे। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द कर्तव्यथा का अर्थ है बिना किसी भय के। सती को इसकी परवाह न थी कि वह अकेले जा रही है, अतः वे निडरती। अनुचराः शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिवजी के शिष्य शिवजी के लिए तथा शिवजी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्यत रहते थे। वे सभी शिवजी की इच्छा को जान गए कि वे सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते। अनुचराः का अर्थ है वे जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ ले। तो सती और शिव की प्रसंग चल रहा है इधर। कभी कभी भागवत में एक घटना घट रहा है और वो अनेक क्लासों में चलता रहता है। जैसे अभी हमारे जीवी वाड़ा में एक टॉपिक चल रहा है, उधर वैकुंठ के द्वार में खड़े हैं दो द्वारपाल, कौन जय विजय, उधर आ पहुँचे चतुष्कुमार, और दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद होता है और विष्णु पहुंच जाते हैं उधर, विष्णु पर लक्ष्मी के साथ, और ये बात चल रहा है पिछले 3 महीनों से उधर, क्योंकि अनेक श्लोक हैं उधर एक एक करके। तो एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी अभी घटना को आगे बढ़ाना चाहिए ना, अभी क्या है। तो हर दिन क्लास भागवतम क्लास जब शुरू होता है उधर हम वैकुंठ के द्वार में चले जाते हैं, जय विजय खड़े हैं और ये आप पहुँचते हैं उधर, चतुष्कुमार पहुँचे हैं और बातचीत क्या चल रहा है। तो पूरा घटना हमारे आंखों के सामने हमारे मन में एक छवि बन जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि हर दिन उसकी चर्चा होता है उधर वैकुंठ द्वार के संबंध में, लेकिन अलग अलग वक्त अलग अलग श्लोकों को पढ़कर वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ तो खास पॉइंट बोलते हैं, उसको समझाते हैं। इस तरह हर दिन धीरे धीरे नए नए पॉइंट को सुनने को मिलता है और सुनकर अनेक विषयों को हमें सीखने का हमें मौका मिल जाता है। तो इस तरह देखने में लग सकता है कि हम एक ही घटना को बार बार पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन हर दिन क्लास अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो उनको अलग अलग लेसन मिलेगा उनको। इस तरह इधर भी शिवजी और सती की बात बहुत दिन से चल रहा है ना। तो कभी कभी भागवतम स्पीकर सोचते हैं कि अरे पहले से बोल दिया भक्तों ने बहुत कुछ है, अभी हम क्या नया बोलेंगे सोचते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे प्रभुपाद जी की तात्पर्य को, देखिए आज के तात्पर्य में एक पॉइंट बोलते हैं प्रभुपाद जी अनुचराहा शब्द का अर्थ है वे जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ ले, ऐसे बताते हैं। तो ऐसे हुआ बात शिव जी और पार्वती के बीच में, कुछ तो ऐसे बातचीत चल रहा है, उनके आए शिव जी के अनुचर भी देख रहे हैं कि कुछ तो मामला बड़ा गंभीर है। तो पार्वती आसमान में देख रही है कि अनेक देवी देवता उड़ रहे हैं अपने अपने एरोप्लेन में, ये वाजपेयी यज्ञ को देखने के लिए जो दक्ष प्रजापति आयोजन कर रहे हैं, देवी देवता अपने पति पत्नी सबके साथ एकदम अलंकृत होकर बहुत खुशी से आनंद मनाने के लिए वो यज्ञ में जा रहे हैं, जैसे मैरिज पार्टी होता है कभी पार्टी में लोग जाते हैं। तो समाज में आप देख सकते हैं अगर कुछ पार्टी होता है तो पार्टी में भाग लेने का और दूसरों के साथ आदान प्रदान करने की सोशलाइजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, उसकी इच्छा खास करके स्त्रियों को बहुत होता है, क्योंकि वो बोलती है पार्वती देखो पतिवर आप तो वैरागी हो, एक पेड़ के नीचे बैठकर माला घुमाता रहोगे आप, आपके अंदर वो शक्ति है, आपको दूसरा कुछ रुचि नहीं है जीवन में, भगवान वासुदेव की ध्यान लगाओ, माला घुमाते रहो और मुस्कुराते रहो, बस एक पेड़ के नीचे बैठे रहो बस, और अपने ही दुनिया में आनंद में। लेकिन मैं तो एक स्त्री हूँ, आपके धर्मपत्नी हूँ, मेरा भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए आपको, और सही ढंग से देखा जाए तो आपको भी आना चाहिए, आपको इंटरेस्ट हो या ना हो हमको साथ में लेके जाना आपका कर्तव्य है, अगर आप ना नहीं आ पाओगे तो कम से कम हमको छोड़ना। तो ये सब लोग वो बोली कि देखो इतने देवी देवता जा रहे हैं मेरे माता के घर में, उधर मेरी सब बहनें आई होंगी घर में, तो मैं जब जाऊंगी सब बहनों के साथ बातचीत करने को मिलेगा, माता को मिलूंगी, पिताजी को भी मिलूंगी, और बड़ा यज्ञ है, सारे देवी देवता सारे दुनिया भर के आ रहे हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे आभूषण पहनेंगे, थोड़ा दिखावा करेंगे, थोड़ा ड्रामा भी करना है, थोड़ा इम्प्रेस भी करेंगे दूसरों को भी, है ना, क्योंकि पार्टी में क्या है महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, दूसरों को दिखाना है, लोगों को मिलना, थोड़ा मिलने से थोड़ा सुख मिलता है, तो दूसरों को भी इम्प्रेस करने की इच्छा होता है। कुछ कुछ लोग आभूषण दूसरों से किराए में लेकर पहन कर जाते हैं उधर ऐसे मैरिज पार्टी में दिखाने के लिए, ऐसे बड़ा नेकलेस पहन कर ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे सब लोग बोलते हैं ये स्त्री कौन है, बड़ी धनी दिख रही है। तो उस दिन वापस लौटने के बाद उनको वापस दे देना पड़ेगा उनको। ऐसे पुरुष भी कभी बड़े कार में आते हैं, किराए में लेकर आते हैं ऐसे। तो इस तरह वो बोल रहे थे कि मैं कहीं से नहीं जा सकती हूँ, क्या इधर आपके साथ बैठे रहने का पेड़ के नीचे, तो सब जा रहे हैं हमको भी जाना है ज़रूर, ये इनका वाद विवाद था। तो शिवजी बहुत अच्छी तरह उनको समझाया, देखो इसको वाक बाण बोलते हैं, वाक बाण का मतलब क्या है, जो वाक का मतलब है जिह्वा, बाण का मतलब है एक, जिस तरह एक धनुष से निकला हुआ बाण किसी के हृदय को छेदता है, इस तरह वाक बाण दूसरे व्यक्ति के हृदय को छेद सकता है। तो वो बोले कि इस तरह की बातचीत किया है ये दक्ष ने, और बड़ी सभा में अपमान की है, और हमको नहीं बुलाया भी है। तो वो बोली ये बुलाने की क्या बात है, रिश्तेदारों को क्या बुलाना होता है क्या, अगर कोई बेटे को शादी होने वाला है तो बेटे का छोटा भाई है उसको इनविटेशन देने की क्या ज़रूरत है, वो तो लगकर शादी में मदद करने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को इनविटेशन की क्या ज़रूरत है। इस तरह वो बोली कि ये तो हमारे ही नाता रिश्ता है, मैं इतना निकट रिश्तेदार हूँ, मैं तो उनके ही बेटी हूँ, हमारे लिए क्या इन्विटेशन है। फिर भी शिवजी बोले नहीं नहीं इन्विटेशन की बात नहीं है, लेकिन वो हमको बुलाना नहीं चाहते हैं, पुकारना हमको बुलाकर उसमें सभा उसमें भाग लेने की मौका देने की इच्छा नहीं है उनको, इतना तक कि दक्ष ने एक श्राप भी दिया कि शिव जी को उनका उनका भाग नहीं मिलेगा, सब देवताओं को उनका यज्ञ का जो हविषान है उसका भाग मिलेगा, लेकिन शिव जी को नहीं मिलेगा उसका। प्रभुपाद जी दूसरे तत्पर में लिखते हैं शिव जी तो एकदम खुश थे, क्योंकि अगर उनको भाग लेने के लिए जाना हो देवताओं के साथ, ऐसे भौतिक भौतिकतावादी देवताओं के साथ उनको आदान प्रदान करना पड़ेगा। ऐसे जैसे कभी कभी आप देखते हैं कुछ कुछ मीटिंग्स होते हैं, बड़े मीटिंग्स होते हैं इस्कॉन में भी हैं, तो कुछ कुछ लोग वो मीटिंग में उनका नाम है उनका, लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं कभी कभी, क्योंकि मीटिंग लंबा लंबा मीटिंग चलता है उसमें है तो। लेकिन कुछ लोग हैं उनको मीटिंग में जाने के लिए ये नहीं है, क्या बोलते हैं, योग्यता नहीं है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करते हैं हमको गेस्ट के रूप में बुलाओ अंदर, हमको भी देखना है क्या चल रहा है। तो अंदर जिसका जो सदस्य है वो नहीं अटेंड करना चाहता है, जो सदस्य नहीं है वो घुसना चाहते हैं, समझे ना आपने। बहुत आश्चर्य की बात है दुनिया है, किस तरह के लोग हैं, उसमें क्या रस मिलता है उनको ही मालूम, वो ऐसे बड़ी इसमें है। तो इस तरह शिव जी ने सोचा कि इस तरह मैं देवताओं की मीटिंग में जाऊंगा तो वो भौतिकता बातचीत करेंगे, वो मेरे अंश लेने के लिए, भाग लेने के लिए मैं जाऊंगा। तो अभी तो श्राप दे दिया कि मुझे भाग नहीं मिलेगा, अच्छा हो गया। इस तरह वो शिव जी बोल दिया कि हम माला घुमाते रहेंगे, भजन करते रहेंगे पेड़ के नीचे, वो खुशी से रहे वो, और बोले कि हमको बुलाया भी नहीं गया है और इसने इस तरह की बातचीत भी की है, तो ना जाना श्रेष्ठ है, और तुम मेरे शरीर का आधा अंग तुम्हारा है, जैसे इधर बताते हैं ना, ठीक है, लास्ट लाइन में क्या बोलते हैं, पुरो वृषेन्द्रास, नहीं ये नहीं है, पिछले अध्याय में आता है, सॉरी पिछले श्लोक में आता है, उस श्लोक में आता है कि उनका आधा, हाँ इधर आता है, प्रेमणात्मनो योर्द मदात सताम प्रिय, आत्मन का मतलब अपने शरीर का, अर्धम का मतलब आधा। तो सती ज्योति भगवान शिव जी बोलते हैं उनको, देखो तुम मेरे शरीर का आधा शरीर तुम्हारा है, उनका नाम है अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारी अर्ध पुरुष, उसका मतलब क्या है, अगर तुम जाओगे तो मेरा भी अपमान करने के मतलब है, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम जाओगी तो इसका मतलब नहीं है, और वो देखेगा दक्ष कि तुम आ गई लेकिन तुमको आदर नहीं देगा, तुमको माने मनाएगा नहीं, देखेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा, इस तरह होगा, ऐसे पहले से उन्होंने भविष्यवाणी की शिव ने, इसलिए तुम्हारे लिए जाना उधर श्रेष्ठ नहीं है, शोभा नहीं देता ऐसे। तो शिव जी ने नहीं बोला कि तुम मत जाओ, उधर जाने से क्या क्या होगा वो बोल दिया उन्होंने, लेकिन सीधा साधा नहीं बोला शिव जी ने मत जाओ करके, क्योंकि वो सोचे कि अगर मैं मत जाओ बोलूँगा, अगर वो मानेगी नहीं तो अपराध हो जाएगा ना, जैसे एक पति पत्नी डाइवोर्स करना चाहते थे तो प्रभुपाद जी पूरा क्लास दे रहे थे डाइवोर्स नहीं करना चाहिए करके, बड़े बड़े पॉइंट्स वगैरह बोला प्रभुपाद जी ने, क्लास होकर नीचे उतरे वो कपल आ गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद हमको डाइवर्स करना है, प्रभुपाद ठीक है जो करना करो बोल दिया उन्होंने। तो एक शिष्य ने पूछा अभी भी आपने क्लास दिया डाइवर्स नहीं करना चाहिए, उनको क्यों नहीं बोला आपने, प्रभुपाद जी बोले कि मैं बोलूँगा डाइवर्स मत करो फिर भी वो करने ही वाले हैं, तो मेरे आदेश को उल्लंघन करके डाइवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा उनका, इसलिए मैंने उनको ऐसे आदेश नहीं दिया जो वो पालन नहीं कर पाएंगे, वो आदेश मैं दे ही नहीं दिया नहीं। वही बात है शिव जी का भी, शिव जी सीधा नहीं बोले कि हे पार्वती हे सती तुम जाओ मत, तुम जा नहीं सकती हो, मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, ऐसे नहीं बोले, ये महान वैष्णव हैं, इसलिए वो बोले कि तुमको जाने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा वो बोल दिया उनको, मतलब तुमको समझना है ये बात है? मैं सीधा नहीं बोलूंगा लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ मेरे मन की बात तुमको समझना चाहिए, वो बुद्धिमता है। इस तरह कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी बहुत प्रशंसा करते हैं कि कर्दम मुनि तुमने पिता की बात समझ लिया बहुत अच्छी तरह, मैं जानता हूँ कि तुम तपस्या करना चाहते हो, जंगल में जाकर रहना चाहते हो, और विष्णु भगवान विष्णु की इतना अच्छी तरह भक्ति की है तुमने, फिर भी मुझे मेरे सेवा जो दिया है भगवान ने मुझे वंश को बढ़ाने में, प्रजा उत्पत्ति करने में, उसमें मदद जरूरत है, इसलिए मैंने 10 पुत्रों को रचाया है, ब्रह्मा जी के छाया से बनाते हैं कर्दम मुनि को। तो कर्दम मुनि को भगवान ने बोला कि ब्रह्मा ने बोला कि तुम प्रजापति बनकर शादी करके प्रजा उत्पत्ति करने के लिए तुम तैयार हो गए, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्योंकि तुम मदद कर रहे हो मेरे इसमें, ये मैं उनका ब्रह्मा जी का प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने मदद की कर्दम मुनि ने। हे कर्दम मुनि को इच्छा भी नहीं थी कि क्या हम प्रजा उत्पत्त में जाकर हम फंस न जाए, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु जब दर्शन दिया उनको, उनको बोला उन्होंने हम आप ही इस तरह हमको प्रजा उत्पत्ति करने में आप आशीर्वाद दो, ऐसे हो जाए कि एक बच्चे को देकर हम वापस संन्यास ले लें, इस तरह उन्होंने योजना बनाया। तो उधर एक श्लोक आता है, ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे मेरे बेटे, तुमने मेरे मन की बात समझकर तुमने इस तरह प्रजा उत्पत्ति करने के लिए तैयार हुआ है, वो एक बात बताते हैं, और तुमने हमारे बात के विरुद्ध कुछ बोला नहीं। कभी कभी होता जैसे ब्रह्मा जी क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि पहले चतुष्कुमार विरुद्ध बात किया उन्होंने, ब्रह्मचारी रहेंगे, अभी ब्रह्मा जी खुश हो गए, ये अच्छा बेटा है, समझदार है, वो चार ब्रह्मचारी कुछ काम का नहीं, हमारे लिए मदद नहीं किया, ऐसे सोचा ब्रह्मा ने, लेकिन ये जो है ये बेटा समझदार है, हमारे मन की बात समझ लिया है, तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। उधर बोलते हैं कि निर्व्यलीकम, वो बताते हैं कि तुम अपने धर्मों को भी पालन करते हो, साथ साथ हमारी भी प्रजा उत्पत्ति में मदद करते हो, इस तरह है दोनों, भगवान को भी खुश हमको भी खुश किया तुमने, ऐसे ब्रह्मा जी बोलते हैं उनको। तो उधर ब्रह्मा जी बोलते हैं, उधर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब गुरु नहीं तो पिताजी कुछ आदेश देते हैं तो तुरंत बेटे को क्या बोलते, यस सर, ऐसे बोलकर उस आदेश को पालन करना चाहिए। तो हाल ही में अभी कुछ एक महीने डेढ़ महीने के पहले मैं बाहर गया था, एक मंदिर के ब्रह्मचारी बोला कि जब वो ब्रह्मचारी बना उसके पिताजी को बहुत आश्चर्य हो गया कि ये इसको मेरे बेटे को इतना रुचि कैसे आ गया इस कान में। तो वो जाकर अनेक भक्तों से मिले, कोई तो भक्त बोला ये श्लोक बोला उनको, निगम कल्पतरु और गलितम फलम, वो श्लोक बोला आपके बेटे को कृष्ण का चस्का लग गया है तो उनको भागवत में रुचि आ गया, इसलिए वो सब छोड़ दिया, इस कान में ज्वाइन कर लिया। तो वो गए इस कान में, पूरा भागवत सेट खरीद लिया उन्होंने, लेकर घर में लेके जाकर सोचा कि मैं इसको पढ़कर ही मेरे बेटे को डिफीट करूँगा, इस तरह सोचकर तो पढ़ना शुरू किया, तो कर्दम मुनि का सेक्शन आ गया, उधर ये श्लोक पढ़ा, तुरंत बेटे को फ़ोन किया, बेटा अभी मिलना है तुमको। तो बेटा आया, बोला बोल रहे हैं तुम्हारे प्रभुपाद जी कितने समझदार है, देखो वो तात्पर्य में लिखते हैं, व्हेन अ फादर गिव्स ऑर्डर टू द सन शुड से यस सर एंड यू शुड फुलफिल इट, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करना चाहिए। और उसके दो तीन लाइन के बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, फादर आर स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी उधर ऐसे। तो बेटा बोला, पिताजी आपने आए ये श्लोक दिखाया आपने, लेकिन चतुष्कुमारों का बात नहीं किया आपने, बोला दोनों के पीछे में भागवत के ऊपर वाद विवाद हुआ उनका ऐसे। तो इस तरह शिव जी ने सोचा कि हमारे बात मानकर ये ठहरना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, लेकिन पार्वती सोच लिया नहीं हमको जाना ही। वो क्या कर रही थी, बाहर जा रही थी, जाने की इच्छा थी, लेकिन पति बोल रहा मत जाओ, अंदर आ गई, बाहर गई, तो बार बार इस तरह हो रहा था है? उनकी, क्योंकि उनके मन जिस तरह तेज गति से बाहर अंदर जा रहा है, इस तरह वो भी जा रही थी, मन ही घुमा रहा था उनको ऐसे। अब शिव जी की ओर मुड़कर पार्वती जी ऐसे देख रही थी, माना उनको जलाकर राख बना देगी वो। वो सोच रही थी ये क्या समझता नहीं है मेरे मन की बात है, बार बार वही बोलता है, सोच रही थी वो। अंत में वो निर्णय ले लिया उन्होंने, हमको जाना ही है कुछ भी हो जाए। वो सोच रही थी अपने मन में, मैं जाऊंगी मेरे पिताजी के घर, पिताजी को समझा दूंगी शिवजी कौन हैं, कितने महान पुरुष हैं, क्या और कुछ गलतफहमी मत रखो तुम्हारे मन में पिताजी, सही सही समझो शिवजी के बारे में, और इस तरह समझकर आदर देने को सीखो, और पिताजी को बोलूंगी कि शिवजी को अभी फ़ोन करो, तुरंत बुलाओ उनको, तुरंत आ जाइए हमारे यज्ञ में, ऐसे बुला मेरे पिताजी बुलाएंगे, शिवजी को सम्मान के साथ स्वागत करेंगे उधर वाजपेयी यज्ञ में, अब सब देवी देवता झुकेंगे शिव जी को देकर आगे करके, इस तरह मेरे पति की मान सम्मान में बढ़ाऊंगी, इस तरह वो अपने मन में सोचकर हमको जाना ही है, अभी मैं जाऊंगी तो मेरे पति थोड़ा नाखुश होंगे, लेकिन जब मेरे पिताजी दक्ष उनको स्वागत करेंगे तब ये नाखुश जो हुए वो खत्म हो जाएगा, वो तभी खुश हो जाएंगे, इस तरह उन्होंने योजना किया। देखिए हमारे जीवन में जो भी करना हो, जो हमको बोला जाता है वो करना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, इतना कुछ कर देंगे अपने ही। तो कल हमारे विद्यार्थियों का एक कैंप हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर का, उधर एक अच्छा स्किट बनाया था उन लोगों ने। क्या है, ये एक ब्रह्मचारी है, मंदिर में युवकों का प्रचार करने वाला है। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को फ़ोन करता है, बोलता है कि फर्स्ट ईयर प्रीचिंग शुरू हो गया, हॉस्टल में जाना है। तो ब्रह्मचारी बोल रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ कोर्स के लिए 100 रुपया रखो विद्यार्थियों को, तो जो विद्यार्थी आते हैं 40-50 आएंगे उनको डिस्कवर को योर कोर्स दो। वो भी हाँ हाँ बोला फ़ोन में, लेकिन वो अपने लोगों को बोला उसने कि तुम पैसा कुछ मत रखो, फ्री में बुलाओ विद्यार्थियों को। तो हम ऐसा करेंगे 500 विद्यार्थियों को बुलाएंगे, बड़ा रिजल्ट आएगा, हमारे ब्रह्मचारी सीनियर को दिखा देंगे कि देखिए प्रभु जी हमने कुछ चार्ज नहीं किया, 500 लोग आ गए, हम ऐसे प्रूव कर देंगे उनको। इस तरह उन्होंने बोला, लेकिन लड़कों ने बोला कि लेकिन हमारे सीनियर ने बोला है कि चार्ज करना है। अरे उनको क्या मालूम, हम ग्राउंड लेवल में हम करते हैं, उनको मालूम नहीं। तो मैं बोलता हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। तो क्या हुआ, तो अनाउंस कर दिया, सबको पैम्पलेट वितरण कर दिया। तो फर्स्ट सेशन वन के दिन तो ये प्रवचन देने के लिए तैयार हो गया, बैठ गया, लेकिन कोई नहीं आए हैं। सबको फ़ोन कर रहे हैं, अनेक लोग फ़ोन कट कर देते हैं, SMS भी भेजते हैं, कोई आते नहीं हैं। तो बार बार सब विद्यार्थी बोलते हैं कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो 300 लोगों ने रजिस्टर की, सिर्फ 3 लोग आ पहुँचे उसमें। तो इस तरह बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया। तो बाद में जब फ़ोन किया, अपने लीडर को बोला कि प्रभु जी हमने डिस्कवरी ऑफ कोर्स किया, सिर्फ 3 लोग आ पहुँचे बस। तो क्या हो गया, क्या हो गया? तो बाद में उनका पता चल गया कि चार्ज नहीं किया इसने। क्योंकि भारत में जब आप चार्ज नहीं करते हो, लोग मूल्य नहीं देते हैं। प्रभा जी बोल रहे हैं एक उदाहरण, एक जमींदार था, बहुत दानी व्यक्ति था। तो उसके आम का बड़ा आर्चर्ड था, बड़े से आर्चर्ड बगीचा था, उसमें बहुत कुछ हज़ारों अल्फांसा आम आए थे। तो इतने साक आ गए उसके गोडाउन में। तो अपने नौकरों को बुलाकर बोला कि जाओ लेके जाकर लोगों को वितरण कर दो, सब लोगों को 4-4 आम दे दो हर घर में जाकर। तो वो लोग लेके गए, ऐसे 4-4 आम देने लगे। तो अनेक घर वाले पूछने लगे कि ये क्या आम दे रहे हैं, कितना है? वो बोला कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो फ्री में क्यों दे रहा है? कुछ तो होगा, फ्री में दे रहा का मतलब इसके अंदर कुछ विष होगा, अगर हम खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं तो इसमें कुछ नशीले चीज़ होंगे, इसको खाने से हम बेहोश हो जाएंगे, हमारे घर में चोरी हो जाएगा। इस तरह सोचकर लोगों ने उसको वापस कर दिया, हमको नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं उदाहरण उनके इसमें एक लेक्चर में, कि इस तरह इंडिया भारत में कुछ मुफ्त में दो, लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसलिए भक्तिचार्य महाराज जब एक चैतन्य लीला करते हैं, वो भक्तों को बोलते हैं कलकत्ता में, चैतन्य लीला करके मत लिखो, सेमिनार लिखो। सेमिनार बोलने से गांव वाले भी आकर बैठते हैं, सेमिनार सुनना है उनको, उनको कथा नहीं सुनना है। क्या सुनना है? सेमिनार। सेमिनार में क्या है, चैतन्य लीला ही चलेगा उधर। इस तरह। लेकिन ये क्यों बोला मैंने आम का उदाहरण, क्योंकि जो बोला वो करना चाहिए, करेक्ट है ना? तो इस तरह पार्वती सोच रही थी, मैं शिवजी से भी बुद्धिमान हूँ, मैं जाकर ऐसे वातावरण मचा दूंगी मेरे पिताजी के घर में, शिवजी को बुलाया जाएगा, सब मिट जाएगा प्रॉब्लम, ऐसे सोचकर वो आगे जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह शिवजी भी शक्तिमान है, पार्वती शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान के बीच में एक मतभेद आ गया है इधर। इस तरह जब मतभेद आता है तो लीला बढ़ता है इस तरह। तो अभी जब पार्वती जाने के लिए तैयार हो गई, देखिए अनेक अनुचर थे शिवजी के, वो पार्वती को देख रहे थे, जब वो बोलते थे शिवजी बोल रहे थे उनको देखते थे, क्या बोल रहे हैं ऐसे है? बहुत आश्चर्य से देखते थे साहब। अभी हो गया सब बातचीत, अभी जाने के लिए तैयार हो गई, अभी अनुचरों को थोड़ा उनका मन विचलित हुआ होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, पार्वती अकेली जा रही है, उधर कुछ कतरा ना हो जाए उनके घर में। लेकिन अगर हम पार्वती जी के साथ हम जाएंगे तो शिव जी बोलेंगे ए तुम हमारे पार्टी में, उनके पार्टी में, ऐसा अगर वो पूछेंगे क्या हो जाएगा हमारा। लेकिन अनुचर इतने बुद्धिमान थे, वो सोच रहे थे कि शिव जी के हृदय में उनकी इच्छा क्या है। वो जानते थे कि ये अर्धांगिनी है, शिव जी के आधा शरीर इनका है, पार्वती जी का। इसलिए हालांकि शिव जी को खेद होगा, व्याकुलता होगी कि मैं मेरी बात नहीं माना, फिर भी उसका रक्षा चाहते हैं शिव जी। इसलिए वो लोग ये बात समझ लिया उन्होंने, इसलिए तुरंत पार्वती जी को, सती को उन्होंने हाथ में तोता दिया, दूसरे हाथ में एक गेंद दिया, उनके आभूषणों को उठा कर दिया और उनको बिठा दिया एक बैल के ऊपर, और जो जाने लगी साथ साथ ये सब अनुचर जाने लगे। अनुचरों को मालूम था कि हम सती के साथ जाएंगे शिव जी खुश हो जाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, यही है श्लोक का मर्म है। मर्म क्या है? हालांकि वो शिव जी के पक्ष में हैं लेकिन जा रहे हैं सती के साथ, क्यों? शिव जी को खुश करने के लिए। इस तरह इसका मतलब अनुचर ऐसे बोलते हैं, भवंतमेवानुचरन निरंतर प्रशांत निशेष मनोरतांतर कदाहमैकांतिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम। इस तरह स्तोत्र रत्न में यमुनाचार्य लिखते हैं, तो प्रभुपाद जी इसको अक्सर कोट करते थे। इसका मतलब क्या है? भवंतमेवानुचरन निरंतर, हे भगवान मैं आपके अनुचर कब बनूंगा? निरंतर काल के लिए। मैं माया का अनुचर बन चुका हूँ लेकिन आपका अनुचर मैं कब बनूंगा? प्रशांत निशेष मनोरथांतर, अपने मनोरथ को छोड़कर मैं प्रशांत आत्मा कब बनूंगा? क्योंकि जब मनोरथ के अनुसार मैं भागदौड़ करूंगा इस दुनिया में, हम सुखी नहीं बनेंगे कभी। मन बहुत बड़ा चंचल है, मन बहुत बड़े घोड़े के बराबर है मन। एक श्लोक है इसे, भवोद्भव क्लेश शता हताहत इंद्रिय परिभ्रमण का पतांतरे नियम्यता मानव में मनोह्य त्वदंग्रिशंक दृढ़ भक्ति बंधने। इस श्लोक में बताते हैं, हे माधव मेरे मन एक घोड़े के बराबर है, तेज से भाग रहा है इंद्रियों की सड़क में और विविध तरह के इंद्रिय तर्पण करने में मेरे मन भागता है और इस घोड़े को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। और आप क्या करो, इस घोड़े के लगाव को अपने हाथ में लेकर आपके पाँव में बांध लो उसको, तो घोड़ा भाग नहीं पाएगा कहीं भी। इस तरह मेरे मन को आपके पाँव पदकमलों में बांध लो तो मैं शांत रहूँ, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह प्रशांत निशेष मनोरथांतर है। कब हम प्रशांत आत्मा होंगे? जब हमारे चित्त भगवान के पदकमलों की सेवा में जुड़ जाएगा, ऐसे बताते हैं। और कदा हम एकांतिक नित्य किंकर है, मैं कब आपके नित्य किंकर बनूंगा? आपके बाज में कड़े होकर किम करोमी ऐसे पूछकर आपकी सेवा करूंगा, ऐसे बताते हैं। प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम, अगर ऐसे आश्रय मिल जाएगा मुझे मेरे जीवन में आपकी, तो बोल रहे हैं कि मैं प्रहर्षयिष्यामि, मैं खुशी ही खुशी रहेगा मेरे जीवन में, आनंद ही आनंद रहेगा, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह यह अनुचर की बात चल रहा है। अनुचर कौन व्यक्ति है? जो अपने मालिक की मन की बात समझकर चलने वालों को अनुचर बोला गया है। अनुचर का मतलब है अपने मालिक को खुश देना चाहते हैं। देखिए एक जमींदार था, उसके बाद एक नौकर था, लेकिन समस्या क्या था, जब जमींदार रहते थे अपने महल में, वो नौकर अक्सर दिखाई भी नहीं देता था। वो बार बार वो बुलाते थे, अरे बुलाओ उस नौकर को, इतना काम पड़ा है। वो लोग बोलते थे, नहीं वो खेती में गया है। ठीक है, वो खेती में जाते थे, उधर बहुत कुछ चीज़ पूछना चाहते थे, खेती में क्या क्या हुआ है, तो पूछते थे किधर है वो नौकर, बोलते घर में गया है अभी। अरे घर में गया है, घर में रहूँ तो खेती में चला जाता है, खेती में रहूँ तो घर में चला जाता है। वापस घर जाते थे, अरे बुलाओ उसको, अभी बात करना है उसे, मार्केट में गया है बोलते थे। तो जब जमींदार थे, वो पकड़ में आता ही नहीं था वो जमींदार के, क्योंकि वो उसको क्या बोलते हैं, काम चोर था वो। काम चोर मालूम है आपको? काम चोर बोलते हैं ना, वो काम चोर था वो, लापरवाही था, काम चोर था ऐसे। लेकिन जब जमींदार आउट ऑफ स्टेशन चलते थे, कहीं तो बाहर जाते थे, तभी वो घर में रहता था, ढूंढता था कि इधर सोना किधर रखा है, चांदी किधर रखा है, क्या क्या खेती से चोरी करके अपने घर में बेच सकते हैं, एकदम वो बहुत एक्टिव रहता था वो, इस तरह है। तो जमींदार को बाद में पता चला कि बड़ा चोर है ये, निकाल दिया उसको। तो ये दो आदत जो सुना आपने ये नौकर की, ये क्या आदत है? वन इज एक्सप्लॉयटेशन, अनदर वन इज एस्केपिज्म। इस दुनिया में सब जीव एक्सप्लॉयटर हैं, नहीं तो एस्केपिस्ट हैं। एक्सप्लॉयटर्स आर कर्मीज, एस्केपिस्ट आर ज्ञानीज। कर्मी और ज्ञानी है। ये कर्मी जो होते हैं क्या करते हैं, भगवान के सब तरह के दिए हुए भेंटों को लेकर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इंद्रिय तर्पण करते हैं, लेकिन भगवान की एक बात भी नहीं करते हैं कभी, भगवान की ओर मुड़कर देखते भी नहीं है, लेकिन भगवान के सब शक्तियों को भोगते हैं। वो कौन है? वो कर्मी है। जिस तरह ये व्यक्ति भी ऐसा ही था। और मायावादी लोग नहीं तो ब्रह्मा, वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत तकलीफ है इधर, वो क्या सोचते हैं कि हमको भगवान के धाम में वैकुंठ में सेवा भी नहीं करना है भगवान की, इधर आकर भी माया की सेवा करना है वो भी हमको नहीं करना है, क्या करना है, आराम करना है, किधर, ब्रह्म ज्योति में। वो एस्केप कर देते हैं। जैसे कोई लड़का पिताजी ने डाला उसको स्कूल में पढ़ने के लिए, टीचर देखते हैं कि पढ़ता नहीं है, क्लास में नाटक करता है, तो टीचर बोलते हैं नील डाउन करो बाहर, तो भाग जाता है वो बाहर से, सिनेमा घर में भाग जाता है वो। इस तरह मायावादी लोग सेवा से भाग जाते हैं और कर्मी लोग भोग करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, सब तरह के काम करते हैं दुनिया में, लेकिन भगवान की खुशी के लिए। दुनिया में जीव क्या करता है, मैं करूंगा कुछ काम लेकिन मेरे भोग के लिए, अगर हमारी भोग नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए आप देखेंगे कुर्सी रहेगा, उसमें कोट रहेगा, लेकिन आदमी नहीं रहेगा उधर, किधर गए हैं, मालिक चाय पीने के लिए गए हैं। आप एक घंटे के बाद जाओ किधर गए, अरे बोला ना चाय पीने के लिए गए, कितना घंटा चाय पी रहे हैं, एक घंटा है चाय पीने के लिए। वो बोलता है कि नहीं आपको जो करना है लिख कर दे दो पेपर में, रख दो इधर, आपके भाग्य में हो तो हो जाएगा 2 महीने में, ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये लोग कैसे काम चोर हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको नौकरी से कोई निकाला गया नहीं, हमको ये प्राइवेट कंपनी में करो उसी दिन सीट निकाल देंगे आपको। तो इस तरह दुनिया में लोग सोचते हैं कि जो स्वार्थी होते हैं दुनिया में वो लोग एक्चुअली कठोर परिश्रम करेंगे, पसीना छूटेंगे जब खुद की भोग है उसमें, लेकिन किसी और की खुशी के लिए पसीना छूटना तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन भक्ति मार्ग का मतलब क्या है, भगवान के लिए पसीना छूटना, भगवान के लिए सेवा करना। भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कितना जोरदार गाते हैं, उनका गला बैठ जाता है। भक्त लोग कितने जैसे कठोर परिश्रम करके हजारों लाखों लोगों को कुकिंग करके प्रसाद बांटते हैं, इस तरह भक्त लोग जैसे प्रभुपाद जैसे आप देख सकते हैं 2 हार्ट अटैक होने के बाद भी जाकर प्रचार करते हैं भगवान के बारे में। तो भक्त का मतलब है भगवान के लिए पसीना छूटता है, हुआ ऐसे कठोर परिश्रम करता है, वो भगवान का अनुचर है, भगवान को आनंद देना चाहता है वो। इस तरह यही अनुचर माना जाता है। अनुचर का मतलब है 2 चीज़ है, एक चीज़ है वो उनकी मन की बात जानता है और उसके अनुसार चलता है, और दूसरी बात है उनके अनुसार क्यों चलता है, उनको सुखी करना चाहता है उनको, तत् सुखी सुखित्वम। ऐसे रूप को बताते हैं कि एक वक्ता का सुख है भगवान को सुख करने में, इस तरह वही उनका लक्ष्य है बस। और इसमें और भी डेवलपमेंट है इसमें अनुचर, मन की बात समझने का मतलब क्या है, जैसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया उन्होंने कटवा में, वो संन्यास लेकर आगे भागने वाले थे वृंदावन की ओर, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उनको घुमा दिया कुछ गोप बालकों के द्वारा, वो लोग बोले कि यही यमुना है। तो ऐसे ही महाप्रभु नाचते हुए यमुना की संबंध में कुछ गीत गाते हुए आप पहुंचे, अचानक उन्होंने देखा है बोट में अद्वैताचार्य प्रभु आए थे, कपड़े लेकर आए थे। अचानक उन्होंने महाप्रभु ने देखा अद्वैताचार्य प्रभु को, देखकर बोला कि अद्वैताचार्य प्रभु आप कैसे पहुंच गए वृंदावन में, ऐसे पूछा उन्होंने। तो अद्वैताचार्य प्रभु मुस्कुरा रहे थे, बोले कि हे भगवान आप जिधर भी हो वही वृंदावन है, आपके पद कमल किधर खड़े रहते हैं वही वृंदावन है, ऐसे बोले। अभी तक महाप्रभु को मालूम नहीं था, अचानक उन्होंने देखा कि ये तो शांतिपुर है। वो बोले कि अरे शांतिपुर में लाया हमको, किसने किया, समझ गए कि नित्यानंद प्रभु का चालाकी है, ट्रिक किया है नित्यानंद प्रभु ने। तो बाहरी दृष्टि से महाप्रभु थोड़े कुपित हो गए, हे नित्यानंद हमको धोखा दे दिया तुमने, हम तो वृंदावन जाने की इच्छा थी हमको, तुमने ऐसे घुमाकर हमको इधर ला दिया हमने। तो वो बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, देखिए महाप्रभु ये गंगा, एक ओर गंगा बहता है दूसरी ओर यमुना बहता है, इसलिए इसको भी आप यमुना सोच सकते हैं आप, ऐसे देखा जाए तो। इस तरह बोलकर वो लोग उनको उठा कर लेके गए इनके घर में, अद्वैताचार्य प्रभु के घर में। महाप्रभु ने आंख खोल कर देखा, अरे ऑलरेडी एकदम अच्छा प्लानिंग हुआ है पहले सब वैष्णव आ पहुंचे हैं उधर से नवदीप से, महाप्रभु उधर जाने के पहले से आ गए सब, अच्छा इतना तैयारी हुआ है मालूम नहीं था हमको। महाप्रभु ने देखा कि तो सब भक्त लोग खुश हो गए नित्यान प्रभु से अद्वैताचार्य प्रभु से कि आप लोगों ने अच्छा उनको हाईजा करके लेके आ गया इधर से ऐसे तो महाप्रभु क्रोध दिखा रहे हैं बाहर दृष्टि से लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं क्योंकि माता आ गई थी सची माता। सब भक्त लोग स्पर्धा कर रहे थे मैं कुकिंग करूंगा महाप्रभु के लिए मैं कुकिंग करूंगा, तो सची माता की आंखों में आंसू थी, वो बोले कि देखो वैष्णव आप लोग महान हो और आप तो हमेशा संग करते हो मेरे बेटे की, लेकिन आने वाले 10 दिन जब इधर ठहरेगा शांतिपुर में मैं कुकिंग करूंगी उनके लिए। तो सब वैष्णव हट गए, बोले कि सची माता की जो भी इच्छा हो हम मानेंगे। तो किचन में गई तो महाप्रभु को अच्छा भोग बनाकर वो दे रही थी, बहुत आनंदित हो गई सची माता की मैं इस तरह मेरे बेटे को कुकिंग कर पाई, बाकी वैष्णव भी महाप्रभु के साथ संग कर पाए। तो नया नया वेश में देखा उन्होंने, पूरा हेड शेव करके सन्यास के वेश में, बहुत आश्चर्य हुआ भक्तों को क्योंकि महाप्रभु को उन्होंने निमाय पंडित के रूप में देखा इस तरह। तो ये अभी ये जो हमने उदाहरण बताया अभी ये भी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के एकदम नंबर वन अनुचर हैं, वो उनकी मन की बात जानते हैं। अभी उनको वृंदावन जाने के बदले उधर से ऐसे मुड़ मुड़ कर इधर लेके आने की योजना नित्यानंद प्रभु की ही थी, लेकिन उनके हृदय में मालूम था कि ऐसा मैं करूँगा तो महाप्रभु खुश हो जाएंगे, ये बात सिर्फ उनको मालूम था, किसी और को मालूम नहीं था, इतना हमको मालूम था। ये इसका मतलब क्या है, अनुचर का मतलब है इतना ही नहीं कि वो जो उसका मालिक बोलता है वो करता है, लेकिन मालिक के हृदय में क्या है उसको क्या खुश होगा वो भी जानता है। वो जैसे एक बार एक भक्त वृंदावन में मैंने देखा, एक भक्त ये गिरिराज से उन्होंने सोन बबड़ी लिया था, तो 4 बॉक्स लिया था उन्होंने ऐसे, तो ऐसे लेकर आया तो उनके वो ब्रह्मचारी के मित्र भी बैठे थे पास में, तो उन्होंने सोचा कि 4 बॉक्स लेकर आया है शायद मुझे भी एक देने वाला है, ऐसे सोचा उन्होंने। प्रभु जी आपने इतना बॉक्स लेकर आया बढ़िया है, सोन बबड़ी है तो हमारे लिए भी एक लाए हैं क्या, ऐसे पूछा उन्होंने। वो बोले नहीं नहीं प्रभु जी, एक है मेरे माता पिता के लिए गर्व करके लिए देने वाला हूँ, एक है वो मंदिर वालों को हमको आते समय प्रसाद दिया ट्रेन में तो उनको देने वाला हूँ, एक है हम विद्यार्थियों के लिए लेके जा रहे हैं पुणे में, और एक है मेरे लिए और मैं थोड़ा थोड़ा देने वाला हूँ सब भक्तों को, ऐसे बोला उन्होंने। तो वो भक्त का चेहरा छोटा हो गया, ठीक है प्रभु जी। लेकिन वो भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि आधा घंटे के बाद वो 2 बक्सा दे दिया उनके हाथ में। अच्छा 2 हमारे पास देने, वो बोला मैं झूठ बोल रहा था तुमको, ऐसे ही तुम्हारे लिए क्या है मैंने 2 ऐसे बोला। इस तरह बोलने से दोनों के बीच में प्रेम और भी बढ़ गया, समझा आपने। इस तरह कभी कभी अगर कोई व्यक्ति गिरिराज स्वीट में 1 बक्स लेके आकर बोलेगा प्रभु जी मैं आपके लिए लाया हूँ बोलेगा, उसमें भी प्रेम है। उससे ज़्यादा प्रेम कब है, पहले बोलता क्या तुम्हारे लिए लेके आया क्या मैंने, ये हमारे लिए लेके आया बोले, और बाद में दे देने का उसको। तो ये भी अनुचर है। ये उदाहरण मैंने जो बोला ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं उनके एक तात्पर्य में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रेम है, पहले से इसमें और ज़्यादा प्रेम है, ये बहुत घनिष्ठ प्रेम है ऐसे इसमें। तो इस तरह भगवान के अनुचर भगवान के मन की बात जानते हैं और ऐसे करते हैं। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज आए थे पुणे में जाना माता के घर में, भक्त लोगों ने एक नया आइडिया की थी, हॉल के सेंटर में बड़ा एक बलून लगाया था उन्होंने, बलून के अंदर अनेक फूल डाला था उन्होंने, रखा था उन्होंने। तो भक्तों की योजना क्या था, महाराज अंदर आएंगे और बलून को फाट करके विस्फोट करेंगे और पूरा फूल गिरेगा महाराज के ऊपर गिरेगा, वो उनकी योजना था। तो उन्होंने हॉल के सेंटर में बड़ा चार रखा था उन्होंने, तो महाराज ऐसे अंदर आ गए तो सब माताओं ने की थी ये आयोजन की थी, महाराज आ गए तो महाराज उधर बैठने के बदले साइड में बाजू में एक सोफा था उधर जाकर बैठने वाले थे महाराज, लेकिन महाराज ने देखा, मैं महाराज को देख रहा था और महाराज ने सब भक्तों को देखा, तो महाराज ने देखा कि सब माताएं कहीं तो ऊपर ही देख रही ऐसे देख रहे वो समझ गए तो कुछ तो है चल रहा है इधर। और उधर जाकर हाल के बीच में बैठ गए महाराज, वो चार में बैठ गए, फाट हुआ और फूल वर्षा हुआ। महाराज ऊपर देखा, आश्चर्य से देखा, जब महाराज जी के चेहरे में आश्चर्य था तो सब भक्तों ने ताली बजाया, हरि बोल बोल रहे थे। बाद में महाराज कमरे के अंदर चले गए, मैं भी गया महाराज के साथ। महाराज को बोला कि महाराज आप सोफा में बैठने वाले थे, आप क्यों उधर जाकर बैठ गए, पूछा मैंने। तो महाराज बोले कि ऐसे ही बैठ गया, बोला महाराज ने। लेकिन महाराज पहले आप इधर आ रहे थे लेकिन उधर जाकर बैठ गए बीच में। महाराज जनरली बीच में बैठना नहीं चाहते हैं, कभी भी बाजू में बैठते हैं ऐसे। लेकिन महाराज बोले कि मैंने सब भक्तों की आंखों को देखा, सब ऊपर देख रहे थे। तो बोले कि तो उनकी खुशी के लिए मैं जाकर बैठ गया, ऐसे बोले महाराज। तो मैंने पूछा, लेकिन महाराज आपके अंदर बड़ा आश्चर्य के साथ देखा आपने ऊपर, ऐसा लगा कि आपको पहले मालूम नहीं था। तो महाराज बोले ऐसे मैं करूँगा तो सब खुश हो जाएंगे ना। तो महाराज बोले कि devotees are like children, when they want to please you sometimes you have to cooperate with their demand. ऐसे कभी उनके डिमांड को पूर्ति करना है। इस तरह भगवत धाम में भी भगवान और भक्तों के बीच में बड़ा स्पर्धा है। क्या स्पर्धा है? एक दूसरे को सुखी करने के लिए। जैसे गोप बालक जब लंच बॉक्स लेके जाते हैं तो एक गोप बालक कुछ तो एक्सप्लेन कर रहा है कृष्ण को, और एक्सप्लेन करते समय क्या करता है, अपने लंच पैकेट को बाजू में रख देता है, ऐसे हाथ घुमाकर कुछ तो एक्सप्लेन कर रहा है कृष्ण को, समझा रहा है वो कृष्ण को। तो दूसरे गोपालक ने देखा कि पास में पड़ा है, भूल गया, इतना बातचीत कर रहा है लंच पैकेट को भूल गया वो, तो उसको उठा देता है वो। तो उसके बाद ये देखता है कि लंच पैकेट नहीं है, किधर है, वो देखता है कि दूसरा उठा कर जा रहा है। तो उसके बाद भागता है तो उसको दूसरे को फेंक देता है, तो उसके बाद भागता है और फेंक देता है वो, ऐसे दूर दूर फेंकते जाते हैं। तो जब ये रोने ही वाला है तो वापस कर देते हैं उसको ऐसे है। तो इस तरह अपने मित्र को कैसे आनंद देना, आनंद देने में बहुत कुछ वैरायटी है, बहुत कुछ विविधता है आनंद देने में। ऐसा नहीं कि हमेशा झुकने से आनंद मिलेगा उनको, आप मालिक हैं मैं सेवक हूँ, उतना ही उसमें भी आनंद है। ठीक है ये तो समय बहुत अच्छा है कि ये झुकता है, बहुत नम्र है, ठीक है, लेकिन उसमें जो रुचि मिलता है उससे भी ज़्यादा रुचि मिलता है जब एक व्यक्ति मन की बात जानता है। जैसे अगर किसी का कपड़े का दुकान हो, कोई आकर पूछता है कि आपके पास कांचीपुरम सिल्क है क्या, हमारी बेटी की शादी है, हमको 20-25 साड़ियाँ चाहिए, एक एक साड़ी कांचीपुरम सिल्क का चाहे तो 20-20 हज़ार है। अरे पूछ रहा 20 चाहिए आपको, 20 हज़ार का मतलब कितना हुआ, 4 लाख हुआ। लेकिन देखता है उसके दुकान में मिल नहीं रहा है वो साड़ी, वो कांचीपुरम तो दक्षिण भारत से लाना पड़ेगा है। तो अपने भाई को बोलता है कि ए भाई आओ इधर, गोडाउन से लेके आओ 20 साड़ी, बोलता है। तो भाई भी जाता है 20 साड़ी लेके आता है तो दे देता है कस्टमर को, कस्टमर 4 लाख पे करके चला जाता है। तो गोडाउन का मतलब क्या है, दूसरे बाजू के दुकान से, वो उनका अंडरस्टैंडिंग है, उनका समझावट है। ऐसे कितने लोगों को मालूम है साड़ी पे, वो कपड़े को दुकान वालों को उनको मालूम है। कुछ लोग आश्चर्यचकित हो गए अभी है? कुछ लोग सुनकर, गोडाउन का मतलब है उसी शहर में दूसरा दुकान है जिधर ये साड़ी मिलता है, लेकिन इनको मिलेगा 10 हज़ार में और ये बेचते हैं 20 हज़ार में, तो फिर 100% प्रॉफिट कर दिया ऐसे। तो इस तरह भाई भाई के बीच में क्या है, समझावट है ऐसे है। तो इस तरह बिजनेस करने वाले करते हैं। इस तरह भगवान और उनके शक्तियों के बीच में भी समझावट है ऐसे, और भगवान के भक्तों के बीच में समझावट है ऐसे। जैसे जब अर्जुन ने बोला, द्रौपदी को देखा कि फूट फूट कर रो रही है द्रौपदी, उनके 5 बेटे मर गए, कौन है माँ इस दुनिया में जिनके 5 बेटे मर गए वो नहीं रोएगी, ऐसे रो रही थी वो। तो अर्जुन के हृदय करुणा रस से भर गया, देखा अपने धर्मपत्नी को, बोला कि द्रौपदी तुम रोवो मत, मैं उस अश्वत्थामा के सर को काट कर लेके आऊँगा, तो उसको जमीन में डालूंगा और उसके ऊपर खड़े होकर तुम नहा लो, इस तरह करूँगा। इस तरह बोलकर तुरंत निकल गया उधर से अर्जुन। और आपको मालूम है कथा भागवत में आता है कैसे वो अश्वत्थामा को पकड़कर जब ला रहा था, कृष्ण बोले अर्जुन को, हे अर्जुन तुरंत उसको मार डालो अभी, ये बड़ा आतताई है, इसको मारने के लिए योग्य व्यक्ति है, मारो इधर तुरंत इसको। कृष्ण मुंह से भी बोल रहे हैं मारो, लेकिन अर्जुन नहीं मार रहा है। मतलब क्या है, क्या वो डिसोबीडिएंट है, वो ये क्या बोलते हैं डिसोबीडिएंट, व्हाट इज, अनाज्ञाकारी है, वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कृष्ण के मन की बात जानता है कि कृष्ण पूरे मन से नहीं बोल रहे हैं कि मारो, ऐसे ही बोल रहे हैं मारो, अगर मारने के लिए जाएगा तो कृष्ण रोकेंगे उसको, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो कभी कभी हम भी बातचीत करते समय पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु को जगदान पंडित पूछ रहे हैं, मुझे वृंदावन जाने का बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं कि वृंदावन जाने का तुमको, तो महाप्रभु के मन में डर आ गया, तो उन्होंने बोला कि देखो वृंदावन में अगर तुम जाओगे तो ब्रजवासियों के साथ निकट संग नहीं करना, क्योंकि वो बहुत रागानुग भक्ति करते हैं वो, जिसके जिसको देकर तुम अपराध करके बैठोगे, इसलिए वृंदावन जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन 2-4 दिन रहकर आ जाओ, जल्दी ज़्यादा मत ठहरो, और वो भी ठहरो सनातन के साथ, कभी भी अकेले मत ठहरो, नहीं तो गुजबा सिंह के साथ मत ठहरो, उनकी आदतों को देखकर तुम अपराध करोगे, इस तरह बोलकर महाप्रभु भेजते हैं उनको। इसका मतलब क्या है, महाप्रभु क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जगन्नाथ पंडित जाए कि ना जाए, उनके बोलने से ही पता चल जाता है कि नहीं। तो जगन्नाथ पंडित जाते हैं और सनातन के साथ ठहरते हैं, तो एक दिन की बात है कि सनातन वो निकट के मंदिर में जाकर जिधर सब लोगों को दान में चावल और सब्जियां देते हैं तो वो लेकर आते हैं, वो अपने कुटीर की ओर जब आ रहे हैं तो अपने सर के ऊपर एक बड़ा सुंदर एक टर्बन पहने हैं, तो ये देख, ये तो कुकिंग कर रहे थे जगदान पंडित किचन में, जब उन्होंने सनातन को देखा, अच्छा टर्बन पहना है, तो प्रेम से पूछा उन्होंने, ये सनातन इतना सुंदर टर्बन पहने हो, क्या महाप्रभु ने दिया तुमको, चैतन्य महाप्रभु ने दिया तुमको, ऐसे पूछा उन्होंने, तो सनातन बोले नहीं नहीं मुकुंदानंद सरस्वती ने दिया मुझे, ऐसे बोला। कौन, वो मायावादी मुकुंदानंद सरस्वती, ऐसे पूछा उन्होंने। हाँ वो मंदिर में गया था, वो लोगों ने जो भी दिया दान में मैं लेके आया, ये भी दिया, वो भी पठन पान कर आ गया मैं। तो इतने कुपित हो जगदानंद पंडित, अपने हाथ में ये गढ़ा लेकर ऐसे ऊपर किया, अरे तुम उनके मायावादी के दिए हुए ये कपड़े को सर के ऊपर तुम पहने हो, किस तरह का, व्हाट इज, किस, व्हाट टाइप ऑफ लॉयल्टी इज इट, व्हाट इज इट, लॉयल्टी इज जवाबदारी ना, जवाबदारी है, किस तरह का वफादारी तुम्हारा, मायावादी के कपड़े पहने, ऐसे उठाया उन्होंने। लेकिन सनातन इतने नम्र थे, सनातन मुस्कुराते हुए बोले, हे जगदानंद पंडित, तुम्हारे अंदर चैतन्य महाप्रभु के लिए जितना प्रेम है मेरे अंदर नहीं है, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं भी तुम जैसे बनो। तो इसको सुनकर जगदानंद पंडित को बहुत शर्म आ गया, मुस्कुराते नीचे रख दिया उन्होंने ये करके ऐसे। उसके बाद बोलने का मतलब क्या है, इसलिए महाप्रभु ने बोला कि तुम सनातन के साथ तैरो, अगर सनातन के साथ तुम गढ़ा उठा सकते हो तो बाकी वजवासियों को देखो तो बोल नहीं सकते क्या कर रहे थे। इसलिए महाप्रभु जानते थे उसके हाल, उनकी स्थिति जानते थे महाप्रभु ऑलरेडी ऐसे। इस तरह कृष्ण भी बोल रहे हैं उनको, अर्जुन को मारो करके, लेकिन वो इच्छा नहीं करते हैं कि उसको मारो ऐसे। कभी कभी माता भी बोल देती है बच्चे, बच्चा कभी कभी माता की साड़ी पकड़ पूछता है, माता जी माता मुझे वो चाहिए, वो चॉकलेट चाहिए, वो बोलती है अरे देखो उसमें मक्खी बैठा है, तुम खाओगे तुमको कुछ व्याधि हो जाएगा, तुमको बुखार आ जाएगा, जुकाम आ जाएगा, पूछो मत, मांगो मत, मैं और कुछ खरीद कर दूंगी तुमको, अच्छा केला देखो, केला, अच्छा केला खाओ, हाँ केला नहीं चाहिए मुझे, वो ही मिठाई चाहिए। तो माता जैसे क्रोध से देखती है और मुड़ लेती है और अपने ही काम करती है। तो बच्चा क्या करता है, ऐसे ऐसे कर देता है, माता मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ठीक है चलो विष पीकर मर जा, बोलती है वो। तो बोलती है मुँह से विष पीकर मर जा, अगर वो बच्चे जाकर विष खरीद कर दुकान से मुँह में डालकर मर जाता है तो क्या माता को सुखी होगी वो। कभी कभी क्रोध से बोलते, इस तरह कृष्ण बोलते हैं मारो उसको बोलते हैं, लेकिन अर्जुन मारा नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि कृष्ण क्रोध से बोल रहे हैं। कृष्ण के अंदर क्रोध क्यों आ गया, क्योंकि इस तरह द्रौपदी के पुत्रों को मारा है बड़ा आदत आई है इसको, इसलिए भगवान भी इमोशनल हो जाते हैं। हा? तो भगवान बोले मारा इसको, लेकिन मारा नहीं उन्होंने, मालूम था उनको। और अर्जुन भी पहले बोले थे कि हम मारकर उसके सर लेके आएंगे, लेकिन सर लेके आने के बदले क्या लाया उन्होंने, पूरे अश्वत्थामा को ही लाया। अब क्यों लाया उन्होंने, उसका भी कारण है, क्योंकि जब अश्वत्थामा को पकड़ा हाथ में, मारने ही वाले थे, तभी तुरंत उनको द्रोणाचार्य की याद आ गया। उनको सोचा कि मैं तो बोला कि मारूंगा इनको, लेकिन इनको मारूंगा तो द्रोणाचार्य क्या सोचेंगे, उनके ही पिता, वो मेरे गुरु जी हैं, वो उनसे सब कुछ सीखा है, कैसे इसको काट सकते, सर काट सकता हूँ। तो उनके मन में सोचा उन्होंने, ठीक है इनको उठाकर लेके जाऊंगा, अगर द्रौपदी बोलेगी मारो तो मारूंगा, अगर द्रौपदी बोलेगी उनके सर की जरूरत नहीं है, तुमने इसको लाया बस उतना हो गया है, मारा मत, इसको जेल में डाल दो, जो भी बोलेगी वो है, ऐसा करूंगा करके उन्होंने किया ऐसे। तो बोलने का मतलब क्या है, इधर एक महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण अपने मुख से बोल रहे हैं कि मारो, फिर भी नहीं मार रहे हैं, उनकी मन की बात जानते हैं। ये इसके लिए बहुत ऊंचा स्तर की निकटता की जरूरत है भगवान से। इससे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम रथ यात्रा में मत आओ, तुम बंगाल में प्रचार करो, लेकिन रथ यात्रा में महाप्रभु ने देखा नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं उधर, कीर्तन चल रहा है उधर, तो महाप्रभु बाहरी दृष्टि से कुपित हुए लेकिन अंदर आनंदित हुए, खुश हुए। तो महाप्रभु को इतना आनंद था कि नित्यानंद प्रभु आकर इतना प्रेरणा दे रहे हैं सब भक्तों को, कीर्तन में बहुत खुशी में थे वो। तो इस तरह की बात को एक व्यक्ति को अनुचर बोलते हैं। अनुचर की लक्ष्य क्या है, अपने स्वामी की खुशी को बढ़ाना, उनके अपने स्वामी के आनंद को बढ़ाना, यही अनुचर है। देखिए बलराम जी जो है पूरे गोवर्धन की लीला में आप देखेंगे कृष्ण ही उठाते हैं गोवर्धन को, कृष्ण ही लीला करते हैं सब कुछ, बलराम की नाम आता ही नहीं है। उस लीला के अंत में एक श्लोक है जिसमें कृष्ण और बलराम और गोप बालक सबके बारे में एक श्लोक आता है। तो हमारे में किसी में किसी को भी प्रश्न उठ सकता है मन में कि बलराम तो अनंत शेष है, सारे ब्रह्मांडों को अपने फण में उठा रहे हैं, तो जब कृष्ण उठा रहे थे क्या उनके मन में करुणा नहीं आया, मेरा भाई कृष्ण उठा रहा है, हे भैया दे दो। तो एक्चुअली दक्षिण भारत में एक मूर्ति है जिधर गोवर्धन को नंद बाबा और बलराम दोनों साथ में उठाया है और कृष्ण थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा एक जगह है, वन प्लेस, दिस इज ऑल्सो डन आउट ऑफ लव। जो नंद बाबा और बलराम जी उसको थोड़ा पकड़ कर रखते हैं, बाद में कृष्ण को देते हैं, थोड़ा कृष्ण को रिलैक्स चाहिए थोड़ा। कभी कभी हम लगेज उठाते हैं ना, अगर बाहर बढ़ जाता तो कोई भक्त आते हैं, प्रभु जी दे दो हमारे हाथ में, तो हम भी दे देते हैं उनको, ऐसे कृष्ण दे देते हैं उनको ऐसे। लेकिन ये बात भागवत में नहीं आता है, कृष्ण कभी तके नहीं, कभी पूरा उठा कर रखा था उन्होंने ऐसे। तो बलराम ने, कोई भी पूछ सकता है कि अगर बलराम भगवान का असली में भक्त है तो क्या उनका कर्तव्य नहीं पड़ता है कि कृष्ण को बोलना चाहिए, कृष्ण कितना समय उठाते रहोगे, साथ साथ दे ना, छोड़ो मेरे पास, मैं उठाऊंगा, तुम आराम करो, रिलैक्स करो। बलराम ने क्यों नहीं किया, तो चक्रवर्ती ठाकुर उसका भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो बोलते हैं कि उस लीला को शुरू करने वाले थे कृष्ण, कृष्णा ही उस लीला के डायरेक्टर थे, वो ही एक्टर थे, वो ही हीरो थे, और उन्होंने पूरा योजना की थी, मैं गोवर्धन का रूप धारण करूँगा, सब भक्तों के भोग को स्वीकारूंगा, अणी और बोलकर और किसी को स्वीकारता रहूँगा, और अंत में इस गोवर्धन पर्वत को उठाऊँगा और मेरे सुंदर दर्शन दूंगा सब भक्तों को। जो गोपियाँ भगवान को सिर्फ शाम के समय देखती हैं, दिन में देख नहीं पाती हैं, अभी सब गोपियाँ भी दिन रात सात दिन सात रात के लिए मुझे सब देख पाएंगे, और उनके आनंद के लिए मैं इस तरह का लीला करूँगा। ऐसे भगवान ने योजना की थी, गायें भी थी, गोप बालक थे, यशोदा माई थे, सब लोग थे ऐसे। तो ये भगवान की इच्छा थी। तो भगवान की मन की बात समझ कर बलराम पीछे हट गए, हालांकि उनके अंदर क्षमता थी, फिर भी किया नहीं उन्होंने ऐसे। तो इस तरह आप देखेंगे, अगर आप कुछ डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप हो सकता है कि आपके हचोड़ी है आपके डिपार्टमेंट के, अभी उदाहरण के लिए भी गौरंग प्रभु हैं, तो उन्होंने एक इंस्पिरेशन दी थी भक्ति वेदांत विद्यापीठम शुरू करने के लिए उधर वाड़ा में। तो गौरंग दर्शन प्रभु करके एक प्रवक्त हैं, वो IAS में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको लेकर गौरंग प्रभु ने ये विद्यापीठम शुरू की। A to Z उसमें काम करने वाले कौन है, गौरंग दर्शन प्रभु हैं। गौरंग प्रभु साल में एक दो बार जाएंगे, देखेंगे कैसा चल रहा है, देखेंगे वो है? वो उसमें एक्टिवली काम उनका नहीं है, सिर्फ उनका इंस्पिरेशन है गौरंग प्रभु का। तो गौरंग दर्शन प्रभु इतने सुंदर टीचर हैं उधर, वो टीचिंग भी करते हैं, वो बुकलेट भी तैयार करते हैं। आपने देखा वो क्या बोलते हैं उसको, स्वबोधनी है? भागवत सुबोधनी वो निकला है, वो ऐसी किताब भी निकालते हैं, सुंदर पावर पॉइंट बनाते हैं हर एक कैंटो के लिए, वो ओवरव्यू इसके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, सबका पेपर भी करेक्ट करते हैं हर दिन है? और अनेक टीचर को लगाकर वो विद्यापीठम को चला रहे हैं, और इसके साथ साथ वो डेटी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं उधर विद्यापीठम में, ऐसे हैं वो वाड़ा में, ऐसे इतना कर रहे हैं। तो वो उनका ही उदाहरण दे रहे थे, एक बार बोल रहे थे कि हम ये सब हम करेंगे, लेकिन गौरांग प्रभु जो हैं जब महाराज के साथ बात करना हो, नहीं तो फॉरेन से कोई भक्त आए हैं है? वो गौरांग प्रभु उनके साथ बात करते हैं विद्यापीठम के बारे में, तो ये पीछे चुप जाते हैं है? सामने आते ही नहीं है। तो गौरांग प्रभु बुलाते हैं उनके, गौरांग दर्शन राव इधर, और ये बोलते हैं इधर गौरांग दर्शन प्रभु हैं, ये ही सब चलाते हैं। गौरांग दर्शन बोलते हैं मैं क्या चलाता हूँ, प्रभु जी जो बोलते हैं मैं करता हूँ बोलते हैं। तो ये ऐसे ही बलराम ने किया, समझा ना आपने। तो गौरांग दर्शन प्रभु बता रहे थे कि हालांकि मैं सब सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ कि मेरे नाम कहीं भी आए। उनका नाम कहीं भी नहीं है उसमें, आप नहीं देख सकते हैं कहीं भी है? तो कोई भी बोलेगा विद्यापीठम अच्छा चल रहा है तो लोग किसका नाम लेंगे, गौरांग प्रभु बोलेंगे। और ये परवाह भी नहीं करते, कठोर परिश्रम करते हैं, इतना पसीना छूटते हैं वो। तो बलराम का भी रोल ऐसा ही है कृष्ण के साथ भी, वो अपना पसीना छूट कर सेवा करेंगे अगर कृष्ण की इच्छा हो तो। कृष्ण बोलेंगे तुमको पसीना नहीं छूटना है, हमको छूटने की इच्छा है अभी, तुम बाजू में चले जाओ तो बाजू में चले जाएंगे वो, तो कृष्ण को छोड़ेंगे। ये अनुचर है, समझा ना आपने। इस तरह से वंडरफुल कृष्णा करके एक चैप्टर है कृष्णा बुक में, आप पढ़िए। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, उधर बताया गया कि प्रहलंबासुर को इतना अच्छी तरह कृष्ण ने मरवाया, ऐसे बोला था उधर। तो मैंने सोचा अरे प्रहलंबासुर को किसने मारा, तो बलराम का नाम लेने के बदले कृष्ण का नाम लिया जा रहा है उधर। कृष्ण ने मरवाया, मरवाया का मतलब क्या है, किसी के द्वारा तो मरवाया उसने, लेकिन नाम किसका आ रहा है उधर, कृष्ण का। तो क्यों, वो चैप्टर का हीरो कौन है, कृष्ण है। तो बलराम उधर झगड़ा नहीं करते, हमारा नाम ने क्यों नहीं डाला उधर, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। तो ये अनुचर है। अनुचर कैसे हैं, जो नमक होता है सब्जी में, नमक डाल दो सब्जी बहुत स्वादिष्ट होता है कि नहीं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, क्या अच्छा लगता है लोगों को, बोलते हैं सब्जी बहुत अच्छा है करेक्ट। लेकिन अगर नमक थोड़ा कम हो गया तो लोग क्या बोलते हैं, सब्जी अच्छा नहीं बोलते हैं, नमक क्यों नहीं है, ऐसे पूछते हैं। देखा ना आपने, अगर कमती हो गया तो नमक को डांटते हैं, अगर नमक कमती नहीं है सही है तो किसको प्रशंसा करते हैं। इसलिए नमक अनुचर है, तो नमक सब्जी के अनुचर है। इस तरह भगवान के भक्त का मतलब है भगवान भगवान के और गुरु परंपरा के अनुचर बनकर उनको चलना चाहिए। तो लेकिन इस तरह अनुचर बनने में कुछ समस्या है। क्या समस्या है, मालिक स्वामी और सेवक के बीच में ये घनिष्ठ विश्वास की जरूरत है। तो अभी इस्कान में भी जैसे प्रभुपाद जी के समय में लोगों को प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत घनिष्ठ विश्वास था लोगों को। लोग अमेरिका में आप देखेंगे जब प्रभुपाद जहाँ पहुँचे, प्रभुपाद इतना सैक्रिफाइस किया है, कुकिंग किया है लोगों को, उन्होंने प्रसाद बांटा है, बर्तन साफ किया है, भारत से कपड़े लेके गए बड़े ट्रंक में, किताब लिख कर छाप कर लेके जाकर, जो माता पालन पोषण करती है बच्चों की, इस तरह उन्होंने बड़ा किया भक्तों का अमेरिका में। तो भक्त लोग प्रभुपाद जी को दे सॉ हिम लाइक अ सेकंड जीसस, इतना घनिष्ठ विश्वास था। आप में से कितने लोग मानते हैं कि विदेशी लोगों को प्रभुपाद के ऊपर भारतवासियों से भी ज़्यादा विश्वास है, करेक्ट ने? देखा ना आपने, देखा आपने। हम भी प्रभुपाद जी को मानते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन पाश्चात्य लोगों को प्रभुपाद जी सब कुछ है उनके लिए, आप देख सकते हैं ऐसे। तो और प्रभुपाद जी के बाद जो प्रभुपाद जी के शिष्य आए हैं वो सन्यासी बने, गुरु बने। प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ लोगों को सन्यासी बनाया 19 साल में, कुछ लोगों को 21 साल में सन्यासी बनाया उन्होंने। तो कुछ लोगों ने बोला प्रभुपाद जी को, अरे आप सन्यासी बना रहे हैं उनको, इतने कम वयस में इनके इंद्रिय अभी तक संयम नहीं हुए हैं, अगर इनका पतन होगा तो क्या होगा। तो तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, अगर कुछ प्रसाद फ्रेश एकदम ताज़ा है एक प्लेट में लाकर कोई रखता है, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं कल ये खराब हो जाएगा, कोई बोलेगा ठीक है खराब होगा कल, लेकिन अभी तो फ्रेश है खा सकते हो ना। इस तरह प्रभुपाद जी बोले कि अभी ये लोग फ्रेश हैं, इनके ये भक्ति में जुड़ रहे हैं, रुचि है, तो मैं संन्यास दूंगा, और जो गंभीरता से अभ्यास करेंगे वो छोड़ेंगे नहीं इसको, इस तरह सोचकर उन्होंने दिया ऐसे। तो संन्यास दिया प्रभुपाद जी ने, तो अनेक लोग संन्यास लेकर गुरु बन गए। उन दिनों में बैक टू गॉडेड मैगजीन में ये आता था, क्या बोलते हैं, मीट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसे एक फोटो के साथ आता था, एक एक गुरु के बारे में वर्णन करते थे ऐसे। लेकिन कुछ समय होने के बाद, 10-20 साल होने के बाद, कुछ लोग माया के अलग अलग तरह के पुकार से वो अपने इसको छोड़ दिया। जैसे 7-8 लोगों ने अपने संन्यास को छोड़कर गृहस्थाश्रम अपना लिया, लेकिन उनसे जो दीक्षा लिए थे लोग, जो 2,000-3,000 लोग, रशिया में एक बड़े गुरुजी थे उनके अंडर 3,000 लोग थे, जब वो गुरुजी जब इस तरह ये बन गए, गृहस्थी बन गए, उनको कितना उनके चोट पहुंचा होगा उनके विश्वास में, आप सोच सकते हैं ऐसे। तो इसके कारण सारे दुनिया में एक तरह का अविश्वास फैल गया कि इस तरह के लोग, अभी माधव संप्रदाय में 800 सालों में सिर्फ 3 लोग छोड़ा है संन्यास को छोड़ा है ऐसे, क्योंकि वो लोग बहुत गंभीरता से कुंडली वगैरह देखकर वो संन्यास देते हैं बहुत सावधानी से। तो हमारे संस्था में संन्यास बहुत जल्दी दिया गया है, उसके बाद गुरु भी बन गए बहुत जल्दी है। तो इसका कारण एक तरह का वीकनिंग हुआ। तो जो लोगों को अनुचर होना चाहिए वो अनुचर हो नहीं पाए अनेक लोग, क्यों, तो शंका जब मन में आता है एक पक्का अनुचर कोई बन नहीं पाएगा, क्योंकि सोचेंगे कि लोग अगर कोई स्त्रियों के साथ निकट संग करता है कोई, तो शंका उड़ता है मन में। अगर कोई प्रभुपाद जी की बात मानकर नहीं चलता है, खुद की कुछ करता है, जैसे एक सिद्ध स्वरूप आनंदा करके एक व्यक्ति था, तो वो क्या करता था, अनेक लोगों को बुलाकर योगा करता था अपने मंदिर में, सब लोग मंदिर के हाल में लेट जाते थे ऐसे, ऐसे बुरा ये करते थे, क्या बोलते हैं, कपालभाति, तरह तरह के श्वास वगैरह लेना, आधा घंटा करते थे, और आधा घंटा होने के बाद लास्ट में हरे कृष्ण एक बार मंत्र बोलते थे बस। तो प्रभुपाद जी जब सुने कुपित हो गए, प्रभुपाद जी बोले कि क्या चल रहा है, प्रभुपाद जी चिल्लाए क्या ये सिखाया मैंने तुमको, इस तरह की मंदिर के हाल में आकर, मंदिर के हाल में नाचना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये किताबें पढ़ना चाहिए, वैष्णव सिद्धांत तो वो है, इस तरह कुछ भी तुम कर रहे हो ऐसे। इस तरह प्रभुपाद जी ने देखा कि, और वो लंबा बाल बढ़ाने लगे उनके सब अनुयायी ब्रह्मचारी सन्यासी। तो प्रभुपाद जी ने पूछा ये लोग क्यों लंबा बाल बढ़ रहे हैं, मैंने शेविंग के लिए सिखाया है, ये लोग लंबा बाल बढ़ा रहे हैं। तो वो लोग बोले प्रभुपाद जी चैत्र महाप्रभु भी लंबा बाल रखते हैं, जीसस का भी लंबा बाल है, बड़े बड़े लोग लंबा बाल रखे, हम क्यों नहीं रख सकते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट किया उन्होंने। प्रभुपाद जी ने बोला कि अरे चैत्र महाप्रभु को किसने तुमको समझाया, प्रभुपाद जी बोले आप नहीं समझाया प्रभुपाद जी, मेरा हॉस्टल देखो क्या है, हमने शेविंग किया तो तुमको भी शेविंग करना चाहिए। तो इस तरह प्रभुपाद जी के उपस्थिति में भी हमारे संस्था में थोड़ा डिविएशन शुरू हुआ, ऐसे वैसे अलग अलग डिविएशन शुरू हुआ। इसके कारण एक व्यक्ति पूरा पक्के अनुचर बनने में सक्षम नहीं है, इसके कारण शंका उत्पन्न होता है। कुछ लोग इस छोटे शंकाओं को लेकर ऋत्विक बन गए, इतने दूर चले गए, वो एक्चुअली ऋत्विक क्यों बन गए, क्योंकि वो शरणागत नहीं है, क्योंकि अगर हम अंतर्यामी परमात्मा से सुनते हैं तो हम इस तरह, वो लोग प्रभुपाद जी ने बोला कि इस्कान को कभी मत छोड़ो, लेकिन वो इस्कान को छोड़कर बाहर जाकर इतना हलचल मचा रहे हैं सारे भारत में, सारे दुनिया में, इस्कान कभी कभी बदनाम होता है। अगर आप लोगों को कोई भी पूछेंगे ऋत्विक के बारे में, आप बोलना चाहिए कि ऋत्विक का मतलब है वो अक्षय पात्र है, और हम लोग अक्षय पात्र नहीं हैं, हम कौन हैं, हम इस्कान हैं, हम जीबीसी के साथ हैं, हम इस्कान हैं, और वो लोग अक्षय पात्र हैं। आपको बोलना, एक लेटर भी मिला है मुझे अभी जीबीसी से, जो क्लियर कट बोलता है अगर आपको कोई पूछेगा तो बोलना चाहिए कि वो लोग अक्षय पात्र वाले हैं। तो इस तरह वो लोग बहुत दूर चले गए, और वो एक एक्सट्रीम है, और दूसरा एक्सट्रीम क्या है, जो लोग अंधविश्वास के साथ लोगों को पालन करते हैं, वो कुछ लोग तो, ये मैं नाम नहीं बोलना चाहता, ये गुरु, एक कथा कथित सन्यासी गुरु थे जो कुत्ते को रखते थे और मंदिर के अंदर लेके आते थे, और उनके कथाकथित अनुयायी वो कुत्ते के महाप्रसाद खाते थे, वो बोलते थे कि ये गुरु के कुत्ता है तो उसका महाप्रसाद खाते थे, और वो सब लोगों का पतन हो गया उनका। इतना तो हमें अंधा नहीं बनना चाहिए। तो शास्त्र बोलते हैं कि अनुचर का मतलब क्या है, अनुचर और स्वामी दोनों के बीच में संबंध होता है, और इस तरह का संबंध होना चाहिए कि एक दूसरे के दूसरे को देखने से उनकी विश्वास बढ़ते जाना चाहिए ऐसे, और दोनों को ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनका विश्वास टूटे और उनके बीच में दूर आ जाए। और अनुचर का ये भी मतलब है अपने स्वामी के सामने आकर स्वामी के अंदर जो दोष देखता है उसको बताने के लिए भी वो डरता नहीं है, क्योंकि वो स्वामी का भी हित चाहता है वो। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास एक पार्षद थे जिनका नाम था दामोदर पंडित, करेक्ट ना, दामोदर पंडित। तो एक बार उन्होंने देखा कि एक विधवा नारी एकदम खूबसूरत नारी थी, वो अपने बेटे को लेके आती थी, तो चैतन्य महाप्रभु उनके बेटे से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि उनके बेटे के गुंगराले बाल थे, सुंदर चेहरा था। तो महाप्रभु उस बेटे को बुलाकर अपने गोद में बिठाकर बहुत प्रेम देते थे, हर दिन आ जाता था वो बच्चा। वो सोचता था बच्चा इतना प्रेम करते हैं महाप्रभु, तो रेगुलर आता था वो। तो दामोदर पंडित ने देखा ऐसे स्त्री को देखा, उन्होंने महाप्रभु को देखा, बच्चे को देखा, उनके मन में कुछ चल रहा था। तो सीधा गए महाप्रभु के पास, उन्होंने पूछा क्या चल रहा है, देखिए आप इतना प्रेम दिखा रहे हैं इस बच्चे को, ये बड़ा खतरा है आपके लिए, आप बड़े सन्यासी हैं, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, सन्यासी के अंदर कुछ छिद्र होगा तो लोग सारे दुनिया दोष दिखाएगा उसका। तो महाप्रभु बोले इस दोष क्या है, ये बच्चे को प्रेम देने में क्या दोष है। वो बोला दामोदर पंडित देखिए आप तो प्रेम देते हैं बच्चे को, तो बच्चा का शरीर जो है माँ के शरीर से निकला है, देखिए बच्चे के शरीर में जो मांस है वो माँ के शरीर से निकला है, और बच्चे के शरीर में जो आत्मा है वो पिताजी के वीर्य से आया है, करेक्ट है ना इस तरह। तो इसलिए किसी बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेम नहीं दिखाना चाहिए, तो वो माता को प्रेम दिखाने के बराबर है। तो इसलिए अगर आप इसको रोज इस तरह बुलाओगे तो वो स्त्री भी आकर खड़ी रहती है उधर दरवाजे में आपको देख रही है, तो लोग सोचेंगे कि सन्यासी का कुछ संबंध है उसके साथ, ऐसे लोग सोचेंगे। महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए, अच्छा ऐसे सोचेंगे लोग। दामोदर पंडित बोला हाँ जरूर सोचेंगे, और आपको बदनाम हो जाएगा और मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, दुनिया के कोई भी लोग आपके ऊपर दोषारोपण करेंगे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको अच्छा नहीं है। तो महाप्रभु बोले उसको आज से इसको कभी नहीं मैं देखूंगा, इसको अलो मत करो बोल दिया महाप्रभु ने, अनुमति मत दो इसको। तो उस दिन के बाद वो लड़का नहीं आया, लेकिन महाप्रभु बोले दामोदर पंडित को, इतने निकट पार्षद थे ना दामोदर पंडित, इसलिए बोले कि देखो दामोदर तुम ब्रह्मचारी हो मैं सन्यासी हूँ, तुम मेरे में भी तुम दोष दे सकते हो। बोला नहीं उन्होंने, उसमें लिखा है हमारे कविराज गोस्वामी ने हमारे लिए एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये सब बोलने की बात नहीं है, मन की बात है। वो बोले कि तुम चले जाओ सची माता के पास, उधर जाओ इसमें नवद्वीप में जाकर तुम सेवा करो ऐसे। तो उन्होंने बोला कुछ थोड़े समय के लिए दूर रखा उन्होंने, थोड़ा दूर जाओ। इसका मतलब नहीं है कि दामोदर पंडित उनके एक प्रिय पार्षद नहीं थे, क्योंकि चार पार्षदों के बारे में एक बात आता है महाप्रभु के, जब दक्षिण भारत यात्रा में जाने वाले थे ना तभी महाप्रभु बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को मैं लेके जाऊंगा तो बड़ा प्रॉब्लम देगा, मेरे दंडा को तोड़ दिया इसने तीन जगह में, इसको लेके जाऊंगा तो क्या क्या और करेगा मुझे पता नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। ये मुकुंद को कैसे मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे तपस्या को देख कर ये ऐसे रोता रहेगा वो, उसका रोना देख नहीं पाऊंगा मैं, और ये जगदानंद पंडित को कैसे मैं लेके जाऊंगा, ये तो इतना बड़ा फीस्ट बनाकर देते जाता है और बड़ा तकिया बनाकर देता है, सोने के लिए बड़ा बिस्तर बनाता है मेरे लिए, इतना मेरा इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाता है, अगर मैं इसको स्वीकारूंगा तो मेरा पतन हो जाएगा, इसको कैसे लेके जाऊंगा, और दामोदर पंडित को कैसे मैं लेके जाऊंगा, अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं शांत नहीं रह पाऊंगा, ये तो एक के बाद मुझे करेक्शन देगा, ये नहीं करो वो नहीं करो बोलेगा वो। इस तरह वो चार पार्षदों को बोलते थे, उनका भी नाम ऐड करते हैं उसमें, इसका मतलब है वो भी बहुत निकट है उनके, वो भी अनुचर हैं। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में भी आप सब लोगों के काउंसलर हैं, आप काउंसलर के अनुचर बनते हो, अगर काउंसलर के रहन सहन में अगर आपको शंका हो तो आप चुपके रखोगे अंदर ही, एक दिन उसका विस्फोट होगा उसका, तो आप सही अनुचर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर या तो उनको पूछो नहीं तो किसी और को पूछो, उनके इसमें रहन सहन में क्यों इस तरह होता है ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, तो इस तरह ऑनेस्टली जो क्लैरिफाई करते हैं वो ही सही अनुचर बन पाएंगे, क्योंकि ये विश्वास जो होता है स्वामी और अनुचर के बीच में, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत गहरा बनता जाता है, एकदम गहरा 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 बनता जाता है। इट गेट्स थिकर एंड थिकर एंड थिकर, द लव इज एवर इंक्रीजिंग एंड बोथ पार्टीज आर ट्राइंग टू प्लीज द हार्ट ऑफ वन अनदर। इस तरह से पार्वती के ये लोग थे शिव जी के अनुचर, लेकिन पार्वती के अनुचर बनकर जा रहे हैं शिव जी को खुश करने के लिए। ये बात है, ये बड़ी बात है, बहुत इट्स अ वेरी अमेजिंग पास टाइम इट इज। दे नो दैट पार्वती इज वेरी डियर टू हार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड ही डजंट वांट टू सी हर गो अलोन, तो उसकी रक्षा शिव जी की खुशी, तो इसलिए हम जाएंगे साथ में, इस तरह सोचकर जा रहे हैं। इस तरह जो अपने स्वामी के मन की बात जाने वाले हैं उनको अनुचर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद की और भक्त वृंद की। प्रभुपाद जी के बारे में भक्त संत ठाकुर ने बोला, अब्सोल्यूट इज सेंशियंट, दव हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कलामिटी दव हैज रिमूव्ड। जो इन्होंने ये गीत में लिखा तो भक्त संत ठाकुर इतने खुश हो गए, अरे मेरे मन की बात कैसे समझा, इसलिए जो भी लिखता है उसको छापो, ऐसे बोला उन्होंने। इस तरह महाप्रभु एक दिन आ पहुंचे सिद्ध बकुल में, ऊपर देखा एक ताड़पत्री था ना, उसको लेकर देखा एक गीत लिखा था उसमें, मैं वही राधा रानी हूँ, आप वही कृष्ण हैं, ये वही वृंदावन है, वही यमुना है, ये वही कदम्ब के कानन है, ये वही मंद हवा बह रही है, इस तरह ये वृंदावन है, लेकिन वृंदावन को छोड़कर आप अभी इधर कुरुक्षेत्र में आए हो, जिधर ये घोड़े और हाथियाँ, बड़े बड़े रथ और अनेक सैनिक लोग टांग टिंग टोंग टांग ऐसा लड़ाई कर रहे हैं सब, ये क्या वृंदावन की माहौल क्या है, ये द्वारका का माहौल क्या है। इस तरह एक राधा रानी ने गीत गाती है, वो उन्होंने लिखा था, कैसे लिखा रूप गोस्वामी ने, क्योंकि रथ यात्रा के समय ये गाना गा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, वो लग रहा था कुछ सिनेमा गाना जैसे, जैसे एक परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक गीत सुंदर गीत गाते हैं, मिला वो श्याम से उद्धव तेरे गुण हम भी गाएंगे, ऐसे कहते हैं ना, तो इस तरह ऐसे ही वो कुछ गीत गा रहे थे, एक प्रेमी प्रेमिका की ओर गाने वाला गीत था, महाप्रभु गा रहे थे। महाप्रभु क्या ऐसे सिनेमा गाना गाएंगे कभी, एकदम सीरियस आदमी है वो, तो भगवान है खुद, लेकिन वो गा रहे थे, ऐसे नाचते हुए गा रहे थे, अनेक लोग समझ नहीं पाए वो क्या गा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति समझ लिया, कौन, वो समझ कर उसी को और भी सरल करके उन्होंने एक पंक्ति लिखा जिसको वो ऊपर रखा था, तो महाप्रभु पढ़कर महाप्रभु की आंखों में आंसू बहने लगे, आश्चर्यचकित हो गए। तो तभी रूप गोस्वामी वापस लौटे समुद्र में नहाकर, तो रूप गोस्वामी को बुलाकर महाप्रभु प्रेम से ऐसे एक लाफा दिया, बोला उन्होंने, हे रूप रूप कैसे मेरे मन की बात समझा तुमने, तो महाप्रभु के आश्चर्य इतना था, वापस गंभीरा में लौटने के बाद भी वो स्वरूप दामोदर को बुलाकर पूछा उन्होंने, ये रूप गोस्वामी ने एग्जैक्टली मैं जो भी गाया उसको ही लिखा है इधर, सही ढंग से लिखा है, और मैं जो गाया उसको भी और सरल करके समझा, सब लोगों को समझने के लिए इतना सरलता से लिखा है उन्होंने, इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम यह न भूतले। इस तरह हम लोगों को भी प्रभुपाद जी की मूड एंड मिशन क्या है ये समझना चाहिए, क्योंकि हम ये संस्था के अंदर हैं, लेकिन संस्था के अंदर होकर हम उनकी मन की बात को हम पूर्ति नहीं करेंगे तो हमें कैसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, करेक्ट है ना। इसलिए हर एक व्यक्ति को हम शास्त्र पढ़ते हैं इस तौर पर पढ़ना चाहिए कि प्रभुपाद जी इस संस्था को किस तरह वर्धन करना चाहते हैं, उनकी मन की बात क्या है, क्या उनके तात्पर्य में बताते हैं, इस तरह अच्छी तरह सोच समझ कर हम इस संस्था को चारों दिशाओं में प्रतिवृत्ति आचार्य नगरादि ग्राम जो महाप्रभु की मन की बात है वो बताते हैं। तो इस तरह हमारे चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद ये गुरु परंपरा सबकी इच्छा को समझकर हम इस संस्था को चलाएंगे, तो संस्था का भी वर्धन होगा और अंदर ही अंदर हमारे भक्ति का भी वर्धन होगा। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की, गौर भक्त वृंदा की। थैंक यू।